नैमिषे अनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसत। ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक है, तीन मंगलाचरण श्लोक के बाद। और यहां श्रील व्यासदेव भागवत की शुरुआत कर रहे हैं कि इसकी रचना कैसे हुई, इसका प्रसार कैसे हुआ। तो यहां एक तत्व महत्वपूर्ण बताया गया है, वो है ऋषि तत्व। नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। और प्रभुपाद जी एक ऋषि का लक्षण बताते, हम सुनते हैं नारद ऋषि, अगस्त्य ऋषि, भृगु मुनि, मुनि ऋषि, तो महान ऋषियों का ये देश है। तो यहां उनका लक्षण यहां बताया गया है कि इन्होंने 1000 वर्ष के लिए पूरे विश्व की भलाई हो ये हेतु स्वीकार किया और इसके लिए यज्ञ करने के लिए तैयार है। यज्ञ सैक्रिफाइस, यज्ञ यानी त्याग, स्वाहा, तो अपने आप को स्वाहा कर देना दूसरों की भलाई के लिए। ये सुंदर तत्व है ऋषि तत्व, अपने आप को नष्ट करके। एक व्यक्ति बड़ा अच्छा समझा रहे थे, बोले एक बीज जैसा है ऋषि, अपने आप को नष्ट करता है ताकि एक पेड़ हुए जिसमें हजारों बीज आ जाए। इस तरह से गुरु भी अपनी सारी शक्ति अपने शिष्यों में डालता है और वो नष्ट होने तक हजारों और तैयार करता है ऐसे लोगों को। एक सच्चे ऋषि का लक्षण। तो यहां रूपा जी तीन चीज बता रहे ऋषि के, तीन लक्षण, प्रमुख लक्षण। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, बहुत उत्सुकता, हर एक के अंदर उत्सुकता है। पर जन साधारण जो है उनकी उत्सुकता है अपना सोचना, तो अपने स्वार्थ के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं लोग, उसको कुछ भी करने के लिए तैयार। बिरला कुछ लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि चलो मेरा परिवार थोड़ा विस्तृत रूप, उससे भी काफी कम लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि मेरा समाज, बहुत ही कम लोग हैं जो सोचते हैं मेरा देश, और उससे भी कम लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि मेरा मतलब पूरा मानवता, और बहुत कम लोग हैं जो लोग पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं, हर जीव के बारे में, हर एक जीव जो है सबका कल्याण और उत्सुक हो उस कल्याण के हेतु, बड़े कम लोग हैं। इसीलिए ऋषि मुनि महान है। तो ये पहला लक्षण है, तीव्र जेन्युइन कंपैशन, पर दुख दुखी, वैष्णव का लक्षण है पर दुख दुखी। अरे इतने लोग दुख हैं, तो ये पहला लक्षण। कुछ लोग हैं और इसीलिए उन्होंने कई संस्थाएं शुरू की है, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, आप देखेंगे इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था कि लोगों का कुल हो, कुछ हो, जिनके पास कुछ पैसा है तो बांटो, दूसरों को भी थोड़ा देखो कुछ करो, इसका उद्देश्य अच्छा है। पर हम देखते हैं कि वो संपूर्ण रूप से भलाई नहीं कर पाता और धीरे धीरे समय के प्रभाव से एक सामाजिक एकत्र आने का एक ये बन जाता है, कारण बन जाता है बस, एक वर्ग के लोगों का। तो ये पहला हुआ। दूसरा लक्षण, न केवल वे सभी जन सामान्य के कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक हैं। पर वो कहते हैं भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता का सही मार्ग नहीं जान पाते, किंतु साधु पुरुष इसे भलीभांति जानते हैं। केवल चिंता होना, दूसरों के प्रति जन कल्याण का इच्छा होना, उत्सुकता होना काफी नहीं है। हमारे एक मित्र थे, उनको इच्छा थी कि दूसरों का भला करना है। उनके जन्म दिवस पर वो हॉस्पिटल में गए और सबको स्वीट खिलाया, अपने नहीं खाया, दूसरों को खिलाया, और तीन लोग मरते मरते बच गए, क्योंकि उनको नहीं मालूम था उनको डायबिटीज है। पेशेंट लोगों को उनको खिलाया, कई लोगों ने डांट खाना पड़ा। उद्देश्य अच्छा था, कार्य अच्छा था। उद्देश्य क्या था कि मैं क्यों भोग करूं, दूसरों का भी भलाई हो। कार्य भी अच्छा था, मिठाई बांटा सबको, पर ज्ञान नहीं था कि सचमुच में उस व्यक्ति की भलाई किस चीज में है। तो कभी कभी इच्छा अच्छी हो सकती है, दूसरों का भलाई हो, जन कल्याण हो, पर वो जन कल्याण किस चीज में है, कैसे किया जाए, यज्ञों वही विष्णु हूं, वो नहीं मालूम। जड़ में पानी डालना नहीं मालूम। काफी लोग हम देखते हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं, भक्तों से ज्यादा तपस्या करते हैं। आप पॉलिटिशियंस को भी देखिए, उनका जीवन प्रैक्टिकली एक सन्यासी जैसा जीवन होता है, उससे भी ज्यादा होता है। बहुत कम समय सोते हैं वो लोग, और कितना इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं, इधर करते रहते हैं, इधर सब कुछ। कम लोग हैं जो लोग बहुत ही सचमुच में भला सोचे सबका हमेशा के लिए, फिर भी कुछ दुर्बलताएं, कुछ कमियां, कुछ बुरे आदत, और वो संग भी ऐसा रहता है उसमें मिल जाते हैं, और धीरे 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 धीरे, और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे चीज उनके विरुद्ध रहता है, संघर्ष, ऑपोजिशन पार्टी हमेशा उसको खींचने में लगी रहती है। तो इस तरह से करने के बावजूद भी सबसे दुखी वही रहते, सबसे निराश। गांधी जी सोचिए आप, उनकी एक ही इच्छा थी कि भारत दो टुकड़ा नहीं हो जाए। बोले मेरे शरीर, मृत शरीर के ऊपर ये दो शरीर, दो भाग होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इच्छा अच्छी थी, कार्य भी कार्यरत भी थे, पर क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने उनको एक चिट्ठी लिखा था, एक्चुअली आप इतने प्रभावशाली हो, आप एक वाक्य कहते हो तो हजार लोग, आप लाखों लोग उसको करने के लिए तैयार हैं, कृपया आप इस सही ज्ञान को प्राप्त करो कि सचमुच में कल्याण क्या है। गांधी जी के बारे में कहा जाता है, ही वॉज ए सेंट अमॉन्ग द पॉलिटिशियंस एंड ए पॉलिटिशियन अमॉन्ग द सेंट्स। किसी व्यक्ति ने अच्छा कहा, पॉलिटिशियन राजनीतिक लोगों में वो संत थे, और संतों में वो राजनीतिक थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि क्या भलाई है। अब सबसे दुखी वही थे जब दो टुकड़ा हो गया उनके इच्छा के विरुद्ध। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इच्छा भी अच्छी हो पर ज्ञान नहीं हो कि सचमुच में अच्छा क्या चीज है, तो भी न वो सुख रह सकता है न दूसरे लोगों को। और जैसा हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। जन कल्याण तो दूर की बात, उत्पात मच जाता है। उनकी उद्देश्य अच्छी है, उनका कार्य भी अच्छा होता है, पर ज्ञान नहीं होने के कारण, क्या सचमुच में भलाई ना होने के कारण। उन्होंने किया था रघुपति राघव राव, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, और ये जो समान क्या बोलते हैं गिरिजन हरिजन, ये सब जो उन्होंने बनाया था, उसका उद्देश्य बड़ा अच्छा था, समानता चाहिए थे, उनकी चाहिए थी कि सब समान रहे, समता आए, पर उसका तरीका क्या है। और आज इतना बड़ा उत्पात मचा हुआ उसके नाम पे, न वो खुश है न दूसरे लोग खुश हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे अभी भी। उत्पात आए वो कल्पते, तो इसलिए न केवल ऋषि मुनियों को तीव्र उत्सुकता है जन कल्याण की, साथ साथ में वो जानते भी हैं कि सही मार्ग क्या है, किस तरह से किया जाना चाहिए ये कल्याण, अपनी मन से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं। और तीसरा, फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति फैल सके। ऐसे लोग समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों को कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। न केवल वो उत्सुक हैं जन कल्याण हेतु, न केवल उनको पूर्ण रूप से ज्ञान है, साथ साथ उस ज्ञान को लागू करने के लिए कुछ भी कष्ट झेल सकते हैं और कुछ भी रिस्क, क्या बोलते हैं, जोखिम में अपने आप को डाल सकते हैं। कई लोगों को इच्छा होगी, कई लोगों को ज्ञान भी होगा, पर क्या सचमुच में कुछ भी कष्ट लेने के लिए तैयार हैं अपने लिए, या कुछ भी जोखिम में, अपने जान को भी जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं? नहीं। तो ये तीन चीज, उत्सुक हैं जन कल्याण हेतु, ज्ञान भी है और उस ज्ञान को लागू करने के हेतु आप कोई भी कष्ट, शारीरिक कष्ट और अपने जान को भी दांव में डालना या अपने जोखिम लेने के लिए तैयार है। और ऐसे ऋषि ऐसे नहीं कि पुराने जमाने में थे, आज भी हैं परंपरा में हम देख सकते हैं। और जिस हद तक ये तीन लक्षण एक व्यक्ति में है उसको हमें ऋषि कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग कॉमिक पढ़ते थे, वो कॉमिक में ऋषि मुनि मतलब एक गेरुआ वस्त्र पहना, जटा और उसके ऊपर एक क्या वो रुद्राक्ष, इधर भी रुद्राक्ष और उधर ऋषि मुनि आ गए महाराज के सभा में। तो ऋषि मतलब ऐसे ही होना चाहिए, हाथ में एक डंडा, ऐसा जप करने वाला डंडा रखने का एक, और दूसरे हाथ में कमंडल, कोई शाप देने वाले ऋषि कोई आ गए और सब आके सब प्रणाम कर दो। तो एक फ्रेम मतलब फिक्स्ड आइडिया हो गया, ऋषि मतलब ऐसा। थोड़े दिन पहले हम लोग मेलकोटे गए थे, वहां एक जगह है, वहां से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है, यहां अगस्त्य मुनि ने निवास किया थे वो, और बड़ा सुंदर मंदिर है, हिमवत गोपाल स्वामी, भंडीपुर, पूरा जंगल है, वो जंगल है भंडीपुर जंगल फॉरेस्ट, और उस फॉरेस्ट में बीच में एक बड़ा पहाड़ है जंगल के बीच में, और उस पहाड़ के ऊपर ये हिमवत गोपाल, हिम यानी हिमालय, क्या बोलते हैं बर्फ, और वत यानी जरा दंडवत, दंडा जैसे, तो हिमवत यानी बर्फ जैसे गोपाल स्वामी। बोले हिमवत गोपाल क्या ये? बोले यहां एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर पे इतना ऊंचा है वो पहाड़ में, हमेशा बादल घिरे रहते हैं उधर, और ऊपर से हमेशा एक बूंद टपकता रहता है ऐसा, कभी कभी बर्फ बन जाता है उधर, ऐसा लगता है हिमालय पहाड़ जैसे। और वो मंदिर के अंदर, बाहर कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसे ही अच्छा है, पर वहां आके हमेशा जमता है और हमेशा बूंद ऐसे टपकते रहता है उसके द्वार पे, गोपाल सुंदर मंदिर है, मंदिर के द्वार पर हमेशा 365 डेज 365 दिन पूरे साल भर, बहुत सुंदर स्वरूप है, अपने साक्षी गोपाल जैसे खड़े हैं, जब उनका अभिषेक कराया हम लोगों ने तो बहुत, जब दही का अभिषेक किए तो ऐसा लग रहा था वो क्या बोलते हैं, हाथी के दांत का बना हुआ ऐसे लग रहे थे, पूरा फीचर सामने है। फिर उसके बाद पूरा अभिषेक करने के बाद ये लेते हैं टर्मरिक, क्या बोलते हैं, हल्दी का इतना पाउडर लेके उसको डालते ऊपर से, पूरा बहुत सुंदर लग रहा था, गौरांग बहुत सुंदर लग रहे हैं एक एक। तब समझ में आया गोप गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, और गैया है, बहुत बहुत सुंदर है। तो वहां अगस्त्य मुनि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और एक कुंड भी है वहां जो उन्होंने स्थापित किया अगस्त्य मुनि ने, और वहां आसपास में देखिए एक भी कौवा नहीं दिखेंगे। उसका कथा ऐसा है कि उन्होंने ऐसा कुंड बनाया जिसमें कोई भी अगर एक बार एक कौवा ऐसा गया अंदर, अंदर जाके बाहर आया तो हंस बन के आया, हंस बन के उड़ गया। इसीलिए वहां एक भी कौवे नहीं दिखते, मतलब कौवे आ गए तो हंस बन जाएंगे उधर, इसलिए कौवे नहीं दिखते। तो हम लोग वहां अगस्त्य मुनि के बारे में चर्चा कर रहे थे। अगस्त्य मुनि का योगदान क्या है, उनका नाम अगस्त्य कैसे पड़ा, अग यानी पर्वत और स्थायते, स्थायते मतलब जिन्होंने उस पर्वत को दबा दिया, अगस्त्य। तो कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि के समय में विंध्या पहाड़ बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, इतनी बढ़ती जा रही थी, हिमालय के साथ थोड़ा कंपटीशन लेकर इतनी बढ़ रही थी कि अगर और बढ़ जाती तो हमेशा हमेशा के लिए, विंध्या पर्वत तो बीच में भारत के बीच में, तो भारत का उस भाग यानी उत्तर और दक्षिण भारत जो था वो दो टुकड़े हो जाते, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बड़ा पहाड़ आ जाए। अभी देखिए हिमालय पहाड़ आ गया, हिमालय के उस साइड में, उस पक्ष जो उस साइड में चीनी लोग रहते, तो उनका देश, उनका रंग इस तरफ के लोगों का रंग, उनकी भाषा इस तरफ जो लगते हैं उनकी भाषा, उनका खान पान इनका खान पान, उनका वेशभूषा इनका पूरा अलग है। इसीलिए दो अलग देश ही बन गए, वो कुछ भी समान नहीं है अभी। तो अगस्त्य मुनि का योगदान क्या था, उन्होंने इस विंध्या पर्वत को दबा ही दिया, इतना दबा दिया कि यूनिटी क्या बोलते हैं, एकता ले लाई दक्षिण और उत्तर भारत में। ये उनका सबसे बड़ा योगदान। दूसरा योगदान है अगस्त्य मुनि का, परशुराम के बाद आई है। परशुराम ने 21 बार भ्रमण करके पूरे विश्व में सारे क्षत्रियों को मार डाला था। क्षत्रिय न होने के कारण ब्राह्मण भी नहीं रहे, क्योंकि क्षत्रिय क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करते, तो न ब्राह्मण थे न क्षत्रिय थे, सबके सब शूद्र संभवा कैओस। उस समय पूरे विश्व में इन्होंने भ्रमण किया और ब्राह्मण और क्षत्रियों का निर्माण किया, ये दूसरा योगदान। तीसरा, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा एक राक्षस था, दो भाई थे जगाई मदाई जैसे, इलवल और उसका छोटा भाई वातापी। उन दोनों का एक ही काम था, सारे ब्राह्मणों को खा जाना। और उनका तरीका क्या था, इलवल क्या करता था, वातापी को, उसके पास शक्ति थी, वातापी को एक बकरी बना देता था, अपनी भाई को बकरी बना के ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण आते जाते रहते उनको बुलाता था, वो हमारे घर में ये श्राद्ध, पिताजी का श्राद्ध है, कृपया आप आ जाइए, तो ब्राह्मण लोग आते थे। और बकरी का उसको काट के, वातापी को काट के, बकरी काट के फर्स्ट क्लास भोजन बना के खिलाता था ब्राह्मण को। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, कहा जाता है कि कलयुग से पहले जो क्या बोलते हैं पल पैतृकम, कलयुग के पहले ब्राह्मण लोग खा के पचा सकते थे उसको, केवल उस समय था ये। इसलिए शास्त्र में है पांच चीज कलि में वर्जित है, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलिम पंच विवर्जयेत। अश्वमेध कलयुग में नहीं हो सकता, गोमेध यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि जान से मार डालेंगे तो उसको फिर से जान नहीं दे सकते हम लोग। अश्वमेध घोड़े काटते थे, फिर से घोड़े को नया जान मिलता था, एक मनुष्य शरीर मिलता था, इमीडिएटली गारंटीड। काटने के बाद मंत्र बोल के वो फिर जागृत हो गया, इसका मतलब ब्राह्मण सही है या मंत्र सही है, और सारे क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट जो भी तैयार किया है यज्ञ के लिए सब सही है, इसका सबूत है। जिसको काटा, एक बूढ़े बकरी को काटा तो नया बकरी मिलना चाहिए उसको, नया शरीर। तो अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम, प्रभुपाद मेंशन करते हैं ये मायावाद सन्यासी विवर्जित है, केवल प्रचार के लिए सन्यास, नहीं तो सन्यास जो है कलयुग में विवर्जित है। सन्यासम पल पैतृकम, पल पैतृकम, पल पल यानी मांस, पित्री जो श्राद्ध के समय खिलाते थे। देवरेण सुतोत्पत्तिम, अगर बड़ा भाई मर गया तो छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी के द्वारा संतान उत्पन्न कर सकता है, देवर उसको बोलते देवर। देवरेण सुतोत्पत्तिम कलिम पंच विवर्जये, ये कलियुग में पांच चीज विवर्जित है। तो वातापी का इलवला का काम था इस तरह से, हजारों हजारों ब्राह्मणों को उसने मार दिया था, सिस्टमेटिकली मारना ये काम था उसका। तो एक बार अगस्त मुनि वहां से गए तो अगस्त मुनि को बुलाया इलवला ने, अगस्त मुनि बोले जरूर क्यों नहीं, और वातापी को बकरी बना के काटा, काट के खिलाया। खिलाने के बाद क्या करता था वो, खाने के बाद तुरंत जब डकार मारे तो बोले वातापी बाहर आ जा, और वातापी उस ब्राह्मण का पेट फाड़ के बाहर आता था। इस तरह से हजारों ब्राह्मणों को मारा था। तो उस समय पुराने जमाने के समय बड़े अद्भुत चीज होते थे, ये हमारे लिए अभी विश्वास नहीं होगा शायद। मिस्टिक योगी थे रावण के, मारीच कैसा था। तो इस तरह से अगस्त मुनि को खिलाया उन्होंने, अगस्त मुनि ने बड़े प्रेम से खाया, बोले इलवला तेरे पिताजी का भला हो, श्राद्ध पात्र लिया। लेने के बाद जोर से इलवला ने चिल्लाया वातापी बाहर आजा। अगस्त मुनि ने जोर से एक डकार मारा और बोले वातापी जीर्णो भवा, बोले बहुत देर बुला रहा, अभी तो खत्म हो गया, पूरा जीर्ण हो गया वो पूरा। और उसके बाद अपनी मंत्र शक्ति से इलवला को भी मार डाला। ये अगस्त मुनि की योगदान। चौथा, अगस्त मुनि के पास एक खास एक शक्ति थी कि ताल पत्ता होता है ना, ताल पेड़, ताल पेड़ में ऐसा उसको काट के उसमें से उसका जो रस आता है, उस पेड़ को ऐसा काटते हैं, काट के जो रस आता है वो थैली में एकत्रित करते हैं, शेखरित उसको एकत्रित करके 40 दिन तक एक चमड़े की थैली में रख कर उसको सूरज में रखा तो वो अमृत बना देते थे। जनरली दारू बनता है वो, थोड़ा देर रख दिया ना सूरज उगने से पहले ठीक है, उसके बाद दारू बन जाता तो उसको अमृत बनाने की शक्ति अगस्त मुनि में थी। तो ये जब अगस्त मुनि का मैंने 2 साल पहले पढ़ा तो मेरे को लगा अगस्त ऋषि में और श्रील प्रभुपाद जी में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं, बल्कि श्रील प्रभुपाद जी एक रूप से देखा जाए तो अगस्त मुनि से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, इसमें कहने में अपराध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था अगर एक बहुत बड़ा पहाड़ जो था उसको अगस्त मुनि ने दबाकर भारत उत्तर और दक्षिण भारत को एकता ले आया उसमें, पर श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व में जितने सारे पहाड़ हैं सब पहाड़ को दबाकर एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बना दिए। नहीं तो आज आप सोचिए अमेरिका, अमेरिकन को इतना अहंकार है कि हम लोग अमेरिकन है। कोई व्यक्ति बता रहे थे अमेरिका अगर जाना है तो वो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, तुम लोग इतना लाइन में खड़ा रखते हैं, इतना समस्या देते हैं, और एयरपोर्ट में भी पूरे कपड़ा उतार देते पूरा का पूरा, और एकदम एग्रेसिव, मतलब भिखारी लोग हमारे देश में क्यों आ रहे हैं ऐसा व्यवहार, बहुत अहंकार है उनको। अमेरिकन को ऐसा लगता है हम लोग पूरे दुनिया को जीते हुए, ये लोग सब थर्ड क्लास है, सब लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड, वी आर ओनली फर्स्ट वर्ल्ड, ये नाम भी देखिए उनका, थर्ड वर्ल्ड, उनको 100% कन्विंस है ये सब जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उनको 100% कन्विंस है। हम लोग खुद ही ऐसा बोल बोल के हम लोग भी विश्वास हो गया कि हमारा गरीब देश है, हमारा नालायक देश है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, सब इंपोर्टेड आना चाहिए। इतना बड़े बड़े अहंकार का पहाड़, मैं चीनी हूं, मैं अफ्रीकन हूं, मैं ये हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, हिमालय जैसे अहंकार का पहाड़। एक्चुअली इस पहाड़ को तोड़ सकता है हिमालय को, ये अहंकार का पहाड़ को तोड़ नहीं सकता। बहुत मुश्किल है एक व्यक्ति के अहंकार को तोड़ना, बहुत मुश्किल है, पूरा एक देश का अहंकार। पर श्रील प्रभुपाद जी ने एल्प्स माउंटेन हो, हिमालय हो, हिमालय विंध्या ने हिमालय को भी तोड़ के रख दिया, फ्लैट सपाट अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया, एकता लाया पूरे विश्व भर में। ऐसा संस्था आप सोच नहीं सकते। आप सोचिए, अमेरिकन भी आते हैं, अफ्रीकन भी आते हैं, मेक्सिकन भी आते हैं, इधर भी आते हैं, उधर के आते हैं, कितने सारे पहाड़ हैं। सब पहाड़ को उन्होंने नष्ट कर दिया और पूरे वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय संघ। दूसरा, पूरे विश्व भर भ्रमण करके ब्राह्मण और क्षत्रियों को बनाया। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी 14-12 साल में 1965-66 में गए और 77, 12 साल में पूरे विश्व भ्रमण करके 14 बार काले, गोरे, पीले, लाल सब प्रकार के ब्राह्मण बनाए उनको। न केवल ब्राह्मण, वैष्णव बनाए जिनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो भारत में आकर तथाकथित 5-50 पैसे जो ब्राह्मण है उन लोगों को असली ब्राह्मण तो क्या है वो सिखा रहे। एक एक ऐसे शक्तिशाली वैष्णव को तैयार किए उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी ने, कम से कम समय में। क्या शक्ति होनी चाहिए वो एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को कृष्ण भावना में लाने में हम देखते हैं कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। कैसे कर पाए नामुमकिन लगता अभी। इतने सेंटर खोले, एक सेंटर को, उस सेंटर को चलाने के लिए पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना लगी हुई है, फिर भी समस्या चलती रहती। अकेले किस तरह से निर्माण किया, किस तरह से इंस्पायर, उनको प्रोत्साहित करते रहना। एक व्यक्ति को, अगर काउंसलर है तो काउंसिली को इंस्पायर करना बड़ा मुश्किल होता है। पूरे विश्व भर में इतने सारे शिष्य बन रहे हैं, सबको इंस्पायर करना, क्या शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण शक्ति बनाना है तार प्रवर्तन। निश्चय एक महान महान आत्मा ही जो डायरेक्टली कृष्ण के साथ संपर्क है, जो पूर्ण रूप से उनके चरण इस संसार में नहीं है, भगवत धाम में है। ये सिर्फ यहां चल फिर रहे हैं पर उनका हृदय, उनके चरण कमल एक्चुअली भगवत धाम में। तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक दोनों पैर इस संसार में है पर हृदय भगवान के चरण कमलों में, ये पहले स्तर का महात्मा। दूसरे स्तर का महात्मा एक पैर भगवत धाम में, एक पैर इधर, और तीसरा महात्मा वो है दोनों पैर और हृदय वहां, सिर्फ यहां चल फिर रहे हैं, बस थोड़े समय के लिए आए, काम करके चले गए। तो ये दूसरा, पूरे विश्व भर में जाकर ब्राह्मण, न केवल ब्राह्मण क्षत्रिय बल्कि वैष्णवों को तैयार किया और इस तरह से दिखाया कि वैष्णव जो है ये सारे जाति, सारे जो भेदभाव हैं शारीरिक, इससे परे होता है, कोई भी वैष्णव बन सकता है, जो रसामृत संघ में वर्णन है। तीसरा, शिला अगस्त मुनि की एक खासियत थी कि वातापी और इलवल जैसे लोग, जिनका एकमात्र उद्देश्य था ये ब्राह्मणिकल कल्चर, वो ब्राह्मण्य हिताय च, भगवान की इच्छा है गाय और ब्राह्मणों का रख। ब्राह्मण मतलब क्या, वो व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान है और जो समाज को नेतृत्व करे, ऐसे लोग ब्राह्मण। राजा के हमेशा मंत्री लोग होते, ब्राह्मण लोग होते थे, बड़े बुद्धिमान, शास्त्र को जानने वाले और जो शुद्ध व्यक्ति थे, जो लोग मार्गदर्शन दे सकते थे, ऐसे ब्राह्मण। तो आजकल के जितने सारे नेता हैं, प्रायशः तथाकथित नेता, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, सो कॉल्ड फिलोसोफर्स, सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट्स, सो कॉल्ड साइंटिस्ट्स, क्यों सो कॉल्ड, तथाकथित क्यों हम कहते हैं? रियल साइंस, रियल साइंटिस्ट कौन है? जो भगवान, जो परम साइंटिस्ट हैं, उनको, उनके विज्ञान को समाज में बांटना, दिस इज रियल साइंटिस्ट। आर्यभट्ट हुए, इतने सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, वैदिक साइंटिस्ट कैसे थे? जो भगवान का ज्ञान है वो लोगों में सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली बांटते थे, वैज्ञानिक तरीके से बांटते थे, मनोकल्पना नहीं, वैज्ञानिक है बोल के सबूत देते थे। फिलोसोफर्स, व्यासदेव जैसे फिलोसोफर जिन्होंने पुस्तक लिखा शुद्ध भक्ति या शुद्ध सिद्धांत, फिलोसोफोस, फिलोसोफर मतलब क्या, लव फॉर ट्रूथ, सत्य के प्रति जिसका प्रेम है वो फिलोसोफर, दार्शनिक, दर्शन मतलब सही दर्शन, सत्य क्या है उसका दर्शन कराना, परम सत्य क्या है उसका दर्शन कराना, दीज आर फिलोसोफर्स। पॉलिटिशियन, सच्चा पॉलिटिशियन कौन है? राजा, प्रत्यक्ष देवता, नरदेव, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति जिनका काम है भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का नियम जो है वो पूरे संसार में लागू करना, जो भगवान के नियम, परित्राणाय साधु नाम, जो भगवान के नियम का पालन कर रहा है उनका संरक्षण करना किसी हालत में, अपना जान भी देकर, विनाशाय दुष्कृता, कितना भी शक्तिशाली हो अगर भगवान के नियम के विरुद्ध काम कर रहा है उसको सजा देना, और धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करने के लिए सब जगह धर्म का पालन हो थ्रू एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन, ये राजा का कर्तव्य है, ऐसा राजा सही पॉलिटिशियन। तो आज प्रायशः सारे फिलोसोफर्स, सारे साइंटिस्ट, सारे जो पॉलिटिशियन हैं, बेसिकली इलवल जैसे, बेसिकली वातापी जैसे, बोलते नहीं है पर कार्यकलाप उनका ऐसे ही है, नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। हमारे एक प्रधानमंत्री ने खास करके लिखा एजुकेशन मिनिस्ट्री को, ये हटा दो, ये गलत साबित करो, ये ऐसा करो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कैसे जंगली लोग थे, जंगली से धीरे 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 प्रगति करके इस तरह से डिस्कवर हो गया, जिसने कहा कि इंडस्ट्रीज आर द न्यू टेंपल्स ऑफ इंडिया, मतलब मंदिर वंदिर तोड़ दो, इंडस्ट्री खड़ा करो, उनका स्टेटमेंट है ये, इंडस्ट्रीज आर द न्यू टेंपल्स ऑफ इंडिया, मॉडर्न टेंपल्स ऑफ इंडिया, ये मंदिर है, उग्र कर्म का जो बड़ा बड़ा कार्य है, आसुरिक प्रवृत्ति का कार्य, रजोगुण का, ये आज के मंदिर है। और ऐसे लोगों को, इसीलिए प्रभुपाद जब आए, फूल्स एंड रैस्कल्स, कैसा उनके न केवल चबा दिया, चबा के हजम भी कर लिया उन्होंने, अपने पुस्तकों के द्वारा ऐसा लॉजिक आर्ग्यूमेंट दिया प्रभुपाद ने कि ही एक्सपोज्ड देम, बाय एक्सपोजिंग देम ही किल्ड देम। जो प्रभुपाद जी का पुस्तक एक बार पढ़ लेता है, ही कैनॉट विद इन हार्ट रिस्पेक्ट, जिस तरह से पूजते हैं आज के लोग, साइंटिस्ट ने कहा है, इसने कहा है, उसने कहा है, इतना मानते हैं उसको, उनके जन्मदिवस तो छुट्टी, बड़े बड़े राजनीतिक और बड़े बड़े, मतलब उन्होंने जितना नुकसान किया है एक्चुअली देश को, देश के प्रति, समाज के प्रति, जन के प्रति, जनसाधारण के प्रति, हम सोच नहीं सकते, एक्चुअली असुर लोग थे ये लोग, थोड़ा कड़वा लगेगा सुनने में, पर ये दृष्टि देना, और इनको पूरा अपने वाद विवाद से क्लियरली वाद देकर एक्सपोज करना, उनके सारे आर्ग्यूमेंट को तोड़ डालना, और उसके विरुद्ध एक सही सत्य को स्थापित करना, सचमुच में श्रील प्रभुपाद जी ने हजारों दार्शनिक, हजारों वैज्ञानिक, हजारों लीडर तैयार किया उन्होंने, और अगस्त्य मुनि में यह भी एक कला थी कि उन्होंने जिस चीज से दारू बन सकता है उसको अमृत बनाते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने भी हर एक को, दारू मतलब क्या, नशा है कि सबको नशा चाहिए, म्यूजिक का नशा, अलग अलग चीजों का नशा, पुस्तक पढ़ने का नशा, उस नशीले चीजों में कृष्ण को डालकर अमृत बना दिया। अमृत, जो अमृत पीता है निर्भय हो जाता है, नेहा विक्रम नाश होती, शुद्ध भक्ति दे दिए, और शुद्ध भक्ति को डालकर, मतलब जो भी कला कर रहे थे ये अमेरिकन लोग थे, बड़े एकदम एडवेंचरस, बोले तुम एडवेंचर करना चाहते हो करो, जाओ चाइना में जाके प्रचार करो, इधर जाके प्रचार करो, भारत में जाके प्रचार करो, भेज दिया उनको, एडवेंचरस, तुम लोग बड़ा बड़ा चीज करना चाहते हो ना, करो भी, खड़ा करो मंदिर इधर। उनकी प्रवृत्ति को लेकर उसमें सिर्फ अमृत डाल दिया, जो दारू बन सकता था वो अमृत बन गया। और उस कुंड के पास जब हम लोग गए तो मैं सोच रहा था, वशिष्ठ अगस्त्य मुनि ने बंडीपुर के उस जंगल में उस मंदिर के बगल में एक कुंड बनाया जिसमें कौवा घुसता है तो हंस बन के निकलता है। श्रील प्रभुपाद जी ने विश्वभर में एक कुंड बनाया जिस कुंड में कोई भी कौवा स्नान करता है तो हंस बन जाता है। अब बोलेंगे कौन सा कुंड है ये? ये उनका कुंड है श्रीमद् भागवतम। नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचिद तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा नयत्र हंसा निरमंति उशिक्षया। नारद मुनि कहते हैं व्यास मुनि को कि तुम ऐसे ग्रंथ की रचना करो व्यासदेव, हरेक को नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो, अगर ग्रंथ लिख रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, फिलोसफी लिख रहे हैं, पर उसमें हरि का यश नहीं है, जगत पवित्रम, जो पूरे जगत को पवित्र करने की शक्ति रखता है, ऐसे हरि कथा, हरि नाम, हरि का गुणगान नहीं है, तद वायसम तीर्थम, ऐसे पुस्तक, ऐसे गाने, ऐसा म्यूजिक कौओं का तीर्थ स्थान है। क्यों कौओं का तीर्थ स्थान है? कौवे कौवे कहां जाते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो डस्टबिन होता है, वहां देखिए सब उनका तीर्थ स्थान, वहां जाके बैठते, यात्रा होता है उनका हमेशा हर सुबह। हंस वहां नहीं मिलेंगे, हंस आपको एकदम मानसरोवर कहीं हिमालय में बहुत सुंदर आईने जैसे चमकने वाले इसमें मिलेंगे। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनंतस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। ऐसी सृष्टि, ऐसे तो ये श्रीमद् भागवतम रसमालयम, इन्होंने एक ऐसा रसमय कुंड बनाया जिस कुंड में हर रोज जो स्नान करेगा कौवा जैसा व्यक्ति, सारे आजकल के दुनिया के सबके हम कौवे जैसे ही हैं, हमारी इच्छा क्या है, कहां जाके हम कहां देखना चाहते हैं, तो कौवे जैसे व्यक्ति भी 100% काला, काटने के बाद अंदर भी काला, पर जैसे नित्यम भागवत सेवया, धीरे 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 रंग बदल जाता है, गोरा बन जाता है, बाहर से नहीं अंदर से भी काला का सफेद हो जाता है। परमहंस सही में मनुष्याणाम सहस्त्रेशु, हजारों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण भक्ति को, दुर्लभ चीज को सुलभ कर दिया, हर जगह हंस, केवल कुंड खोल के रखा, स्नान करना हमारे ऊपर, इसमें शक्ति है एक्चुअली। तो इस तरह से वो ऋषि मुनि उस समय के नहीं थे, ऐसा नहीं कि उस समय ऋषि मुनि थे आज लोग नहीं है, नहीं, भगवान की कृपा से, इस परंपरा की कृपा से आज भी वो ऐसे लोग हैं, और हमें भी, भले हम उतने महान ऋषि नहीं हो, उतनी शक्ति नहीं हो, पर कम से कम अपना तो उद्धार करो बाबा, और हो सके तो चार लोगों को साथ में ले चलो, अगर थोड़ा भी जन कल्याण की इच्छा, थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त करे कि किस तरह से दूसरों का भलाई करे, और थोड़ा कष्ट लेंगे, थोड़ा रिस्क लेंगे, देख लेते हैं भगवान के लिए ले रहे हैं, उतना भी ले लेंगे, थोड़ा तो ऋषि तत्व आ जाए हमारे में। ऋषि बनने के लिए हम लोग नहीं करना चाहिए, उन लोगों ने जो दिया इतना तपस्या करके उसको फायदा उठाना है हमको बस, और हो सके तो और दो लोगों को देना, बस काफी है। एटलीस्ट पृथ्वी माता पर बोझा नहीं होंगे हम लोग। अरे किसी को अच्छा नहीं लगता किसी के ऊपर बोझा बनना, है कि नहीं? नो रिफाइंड जेंटलमैन, कोई एक सज्जन किसी पर बोझा बनने की इच्छा नहीं रखता, बोले मर जाऊंगा पर किसी पर बोझा बनने की इच्छा नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो व्यक्ति बोझा नहीं है, वो सिर ताज मुकुट के जैसा है, पृथ्वी माता को बहुत अच्छा लगता है। चैतन्य भागवत में वर्णन है, जब एक वैष्णव हाथ उठाकर नृत्य करता है, कीर्तन करता है, जब हाथ उठाता है तो जितने सारे वो लोग है ना वहां पूर्वज, उन लोगों का उद्धार कर देता है, आकाश में जितने सारे लोग हैं, ऊंचे लोकों में, पितृ लोकों में जितने लोग हैं, और जब वो शरीर पर पृथ्वी पर नाचता है उस तरह से पृथ्वी में जितने लोग हैं उनका उद्धार हो जाता है, और जहां भी वो दृष्टिपात करता है उस जगह का उद्धार हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी किस तरह से लगते थे मामूली व्यक्ति चलते फिरते, पर वो मामूली व्यक्ति नहीं थे। प्रभाव से फलेन परिचयते, फल से हम देख सकते हैं कि कितने महान ऋषि थे वो, ऋषि तत्व उनमें था। ये नहीं है कि हमारे संस्थापक आचार्य हैं इसीलिए हम लोग थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, नहीं, अगर नहीं भी है तो बाहर से भी देखो, आप एक्चुअली देखो कि एक व्यक्ति 11-12 साल में 70 साल की उम्र में शुरू करने के बाद एक पैसा नहीं साथ में, 40 रुपया, और वो भी अमेरिका में जाने के बाद उसको कोई पूछता भी नहीं उस पैसे को, कैसे कर पाए वो? और ये हमारी खास कृपा है कि उनसे हम कम से कम जुड़े हुए, तब इसका हम फायदा उठा सकते। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।